उपन्यास उपन्यास का खंड संख्या 6 विकट वास्तव। सूर्योदय से पूर्व ही जनप्रवाह सांगल के सभी पथों और वीथियों से बहकर नगर के उत्तर द्वार पर जनसागर का रूप धारण कर रहा था। अनेक नागरिकों ने संपूर्ण रात्रि या रात्रि का अधिकांश नगर द्वार पर ही बिता दिया था। स्त्री पुरुष के हाथों में पुष्पमालाएं और झोलियों में पुष्प और धान की खीले भरी थी। द्वार के तोरण पर मंगलवाद्य और सम्मुख नगाड़े बज रहे थे। नगर प्राचीर और उत्तर मार्ग पर खड़े वृक्ष भी उत्सुकता से व्याकुल नागरिकों से लद गए थे। अनेक लोग अपनी उत्सुकता का दमन न कर पाने के कारण मार्ग पर उत्तर की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। सेना के अग्रदूतों ने समाचार दिया, मध्य की विजयी सेना घायल सेनापति प्रतिसेन के लिए सैन्य सांगल की ओर बढ़ रही थी। गत रात्रि नगर से 2 योजन के अंतर पर शिविर डालकर सेना ने विश्राम किया था। सेनापति युद्ध में लगे घावों के कारण वेग से यात्रा करने में असमर्थ थे। प्रतिसेन के आहत होने का समाचार नगर में पहुंचते ही वैद्यवर स्थिविर चिविक तथा नगर के अन्य सर्वश्रेष्ठ अनुभवी वैद्यों को अत्यंत वेगवान अश्वों से जुटे रथों पर प्रतिसेन के उपचार के लिए भेज दिया गया था। सूर्य के प्रकाश की चौकाचौंध से नेत्रों को बचाने के लिए हाथों का ओट किए उत्तर मार्ग पर सुदूर दृष्टि लगाए जनसमूह ने मार्ग पर धूल का एक मेघ सा देखा। जन के विपुल जय होश से वाद्यों का स्वर डूब गया। पृथ्वीसेन और ज्वर से श्रांत मंद गति से चलती सेना से घिरी शिविका में संकटों पर दार्व को पराजित प्रदेश से स्वर्ण मणिमाणिक्य रत्न तथा अन्य बहुमूल्य पदार्थों का संचय और 2 सहस्त्र दास दासियों को लिए नगर द्वार पर पहुंचा। उल्लासित सौभाग्यवती कुलनारियों ने अर्धपात्र से जलते घृतों के 100 दीपों से विजयी सेना की आरती उतारी। वृद्ध सेनापति गणपति मिथोदर्श की पौत्री कुमारी शीरो ने पृथ्वीसेन का विजय अभिषेक कर यवन प्रथा के अनुसार उसे हरित किसलय का मुकुट पहनाया। वृद्ध गणपति युवक सेनापति का सिर अनेक क्षण तक अपनी श्वेत दाढ़ी के लिए गदगद मौन बने रहे। महावृद्ध महापंडित धर्मत्स देव शर्मा दासों का आश्रय लेकर अपनी शिविका से उतरे। घायल सेनापति के सिर पर हाथ रखकर उन्होंने उन्मुक्त आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार महासामंत सावार्थ आचार्य प्रवर्धन और गण परिषद के दूसरे सदस्यों और विशिष्ट समाज ने भी विजयी युवक सेनापति की अभ्यर्थना की। निर्भय सांगल नगरी विजय के उन्माद से उन्मुक्त हो उठी। राजपथों और वीथियों में सभी ओर रात दिन उत्सव दिखाई देने लगे। राजपुरुष दार्व से प्राप्त बहुमूल्य पदार्थों और दास दासियों की सार्वजनिक बिक्री कर गणकोष को धन से पूर्ण कर रहे थे। जिन परिवार के पुरुष संग्राम यज्ञ में हत आहत हुए गणपत ने उन्हें निर्वाह के लिए यथेष्ट धन और दास दासी भेंट किए। जिन परिवार के पुरुष संग्राम यज्ञ में हत आहत हुए गणपत ने उन्हें निर्वाह के लिए यथेष्ट धन और दास दासी भेंट किए। महाश्रेष्ठी प्रेस्थ ने कृपा के लिए एक विराट यज्ञ द्वारा देवताओं की तुष्टि की। आचार्य प्रवर्धन ने उस महायज्ञ के अर्धावु का पद स्वीकार किया। 1 सहस्त्र याज्ञिकों ने स्वास्तिक वाचन तथा मंत्रोपान किया। पूर्ण धातु चैत्य में सृष्टि ने तथागत के विम्ब के सम्मुख 1 सहस्त्र भिक्षुओं द्वारा सूत्र पाठ कराकर उनका भिक्षा सत्कार कर परित्राण के लिए कृतज्ञता प्रकट की। इस प्रकार देवी जीएस के मंदिर में भी उन्होंने बलि दी। महाश्रेष्ठी प्रस्थ का प्रसाद आनंद कलरव से मुखरित हो उठा। अंतःपुर में केवल पृथ्वीसेन के कक्ष में अस्तभ्यता थी। विस्गाचार्य वैद्य प्रवर स्थिर चिविक पृथ्वीसेन की चिकित्सा कर रहे थे। शल्य क्रिया निपुण चिविक ने पृथ्वीसेन के घावों को कौशेय के तारों से की उनका औषध का रूप लेप किया। मुख से भी संजीवक औषधि देकर वैद्य ने आहत को पूर्ण विश्राम का आदेश दिया। पृथ्वीसेन औषध के प्रभाव से निद्रा के पूर्ण विश्राम द्वारा स्वस्थ लाभ कर रहा था। महासेनापति मिथोदश की पौत्री शिरो प्राय प्रतिक्षण विजयी सेनापति की परिचर्या में समीप बनी रहती। दिव्या ने छाया दूसरी दासियों धिति शर्मा और प्रसाद के बालकों के मुख से पृथ्वीसेन के नगर प्रवेश के समारोह का सविस्तार वृत्तांत सुना। स्वयं वह अस्वस्थता और अपनी अवस्था के प्रति संकोच अनुभव कर नगर द्वार पर न जा सकी थी। अपनी उस परिस्थिति से वह तड़प कर रह गई। पृथ्वीसेन के सम्मान से उसने गर्व अनुभव किया। उसके घायल और रोगी होने के समाचार से उसका हृदय विकल था। अपनी संकोचजनक स्थिति से कुंठित हो वह सोचती, यदि आर्य के समर प्रस्थान से पूर्व ही उसका विवाह हो गया होता, वह भी किसी अवस्था में स्वीकारूढ़ होकर नगर द्वार पहुँचती। घाव से छत आर्य का सिर अपने गोद में रखकर उन्हें प्रसाद में ले आती। सेवा के लिए शीरों का प्रतिचयन की रोगशैया के समीप रहना दिव्या को कटुवृद्धि मात्र जान पड़ता था। अपनी विवशता में शरीर को वस्त्रों से ढके, सब यत्नों से अपना रहस्य सुरक्षित किए वह उसी क्षण की कल्पना में आत्मविस्मित रहती, जब प्रतिसेन के स्वस्थ होने पर उनका विवाह विधि का रूप और समर्थन पा सकेगा। दिव्या प्रतिक्षण प्रेस्त प्रसाद से वृद्धा दासी वापा के समाचार लेकर आने की प्रतीक्षा करते करते व्यग्र हो उठी। संयम का बंधन असहा हो गया। सूर्यास्त के पश्चात शरीर को वज्रों से ढक ओढ़कर शिवका में बैठ कर छाया को साथ लेकर वह प्रेस्त प्रसाद में पहुंची। धड़कते हृदय को दोनों हाथों से संभाले, आहट बचाकर दासी द्वारा दिखलाए मार्ग से दिव्या प्रतिसेन के कक्ष के द्वार की ओर बढ़ी। दासी ने आदर से द्वार का पट हटाया। दिव्या ने देखा, सया पर लेटे हुए प्रतिसेन का शरीर अत्यंत कृश होकर पीला पड़ गया था। उसका सिर और कंधे चीरों से लिपटे थे। रोगी की सया के समीप अत्यंत गौरवर्ण पीठ पर फैले पेंगल केसों पर यवन प्रथा का मुक्तावली का किरीट बांधे सीरो एक दासी की सहायता से आधार पर रखे पात्र में रोगी के लिए औषधि का पेय बना रही थी। दिव्या को देखकर सीरो ने गृहस्वामिनी के अधिकार से रोगी की सैया के उपाधान की ओर रखा आसन ग्रहण करने का संकेत किया। उसके कान के समीप मुख कर कठिनता से सुने जा सकने योग्य स्वर से सीरो ने वैद्यराज स्थिवर चिविक का आदेश सुनाया, किसी भी अवस्था में आर्य की निद्रा भंग न की जाए, अभ्यागत वार्तालाप द्वारा योगी को क्लांत न करें। अपने आसन से दिव्या को प्रतिसेन के चीरों से बंध मस्तक और कंधों के अंतरिक्त शरीर का कोई भाग दिखाई न दे रहा था। प्रतिसेन निद्रागत था। उसके सम्मुख और समीप पाकर भी उससे बात न कर पाना, उसका स्पर्श न कर पाना और उसके बीच दूसरे व्यक्ति के व्यवधान से दिव्या अधीर हो गई थी। प्रतिसेन को अपने अंक में पा लेने के लिए उसका अंक स्फुरित हो उठे। बीते 6 मास का अंतर दूर होकर वियोग की रात्रि में प्रतिसेन का स्पर्श दिव्या की अनुभूति में सजीव हो उठा। सिरों की उपस्थिति और उसका निषेध प्रतिसेन को बलात् उसके अंक में छीने था। निरंतर प्रतिसेन की ओर लगे दिव्या के नेत्र उसे पूर्ण रूप में पा लेने के लिए फैलते जा रहे थे। यथेष्ट विस्तार के लिए स्थान न पाकर हृदय का वाष्प नेत्रों के जल के रूप में परिणित हो गया। दिव्या की विस्तार और क्षोभ से सीरो शिष्टाचार के प्रदर्शन के लिए उसके समीप आकर तात धर्मस्य और उसके परिवार का कुशल क्षेम पूछने लगी। उसने रोगी की कठिन परिस्थिति और अपने गुरुभार का विस्तृत वर्णन किया, कैसे दिन रात रोगी की परिचर्या में उसे तत्पर रहना होता है। परिजन और समाज के अत्यंत अनुरोध करने पर भी क्षत रोगी की चिंता छोड़कर उत्सव में सम्मिलित होना उसके लिए कठिन हो जाता है। सिरों का व्यवहार दिव्या को अपनी स्थिति और दुर्भाग्य के प्रति लांछन और उपहास के रूप में सहादंभ और अहंकार जान पड़ा। उत्तर में वह कुछ न कह सकी, केवल पलक छपक कर मौन रह गई। विस्मय की मुद्रा में नेत्र फैलाए चुबुक पर तर्जनी रख सिरों ने प्रश्न किया, सखी तुम भी तो इन महत्वपूर्ण उत्सवों में सम्मिलित नहीं हो पाती, तुम्हारे बिना कला का प्रसंग तो निर्जीव रह जाता है। देवी मल्लिका के नेत्र सदा तुम्हें ही खोजते रहते हैं, वे सदा ही तुम्हें स्मरण करती हैं। कौतूहलपूर्ण दृष्टि दिव्या के शरीर पर घुमा सिरो ने अपने उत्तरी अपने ओठों पर रख लिया। उसके पृष्ठ रक्त अधर का स्फुरण गोपन के इस प्रयत्न से और उग्र हो गया। प्रतिसेन की निद्रा भंग की प्रतीक्षा में बैठे रहना दिव्या के लिए असंभव हो गया। जिस प्रकार भी संभव हो सका शिष्टाचार की रक्षा के लिए आहत वीर के स्वास्थ्य मंगल कामना कर वह लौट गई। निद्रा भंग होने पर प्रतिसेन को दासी द्वारा दिव्या के आकर लौट जाने का समाचार मिला। नगर द्वार पर जिस समय कुलनारियां और कुलकन्याओं ने उसका विजय तिलक किया था, उसके नेत्र निरंतर दिव्या का मुख और उसका कान दिव्या के स्वर को खोज रहे थे। पीड़ा उत्कंठ न होने की अवस्था में वह निरंतर उसी के विषय में सोचता रहता। दिव्या का इतने विलंब से आना और 2 शब्द बोल पाने की प्रतीक्षा न कर लौट जाना उसके लिए दारुण व्यथा बन गया। दिव्या के समीप स्वयं पहुंच पाने की अक्षमता उसे व्याकुल किए थी। दिव्या की इस उपेक्षा से खिन्न होकर वह निरंतर इसका कारण सोचता रहता। उत्सुकता से व्याकुल होकर प्रतिसेन ने सिरों से कुमारी दिव्या के आने और सत्कार के लिए प्रतीक्षा किए बिना लौट जाने के संबंध में पूछा। सिरों के मुख पर विडंबना की मुस्कान आ गई। अपना स्थूल रक्त अधर बिचकाकर वितृष्णा से उत्तर दिया, कुमारी के मन की इच्छा के विषय में मैं क्या कह सकती हूँ। आर्धर्मत्स की प्रपोत्री के लिए रोगी की निद्रा पूर्ण होने के समय तक प्रतीक्षा सहा न रही होगी, और क्या जानूं। सिरो से उस विषय में पुनः कोई प्रश्न पूछने का साहस पृथ्वीसेन को न हुआ। चिंता प्रकट न कर पाने पर पृथ्वीसेन का मन चिंता से और भी अधिक क्षुब्ध हो गया। वह अनुमान न कर पाया 6 मास की उसकी अनुपस्थिति में क्या हो गया। क्या कुल अभिमान के कारण दिव्या उसके प्रति उदासीन हो गई, अथवा अपने परिवार से त्रस्त होकर विरत हो गई। क्या किसी के अधिक प्रबल आकर्षण के सम्मुख वह झुक गई। अब मुझसे मिलने में उसे अनिच्छा क्यों होने लगी। अनेक प्रहर तक निश्चल पड़ा वह इसी प्रकार की दुष्कल्पनाओं में खोया रहता। स्थवर चुबक की चार्मात्रिक औषधि और कांधारी फूलों के रस से शरीर में शीघ्र ही रक्त वृद्धि होकर पृथ्वीसेन की प्राण शक्ति समर्थ अनुभव करने लगी। उसी अनुपात में दिव्या की स्मृति और उसके लिए व्याकुलता का वेग बढ़ने लगा। जीवन का पासा फेंक कर प्राप्त की हुई सफलता दिव्या के अभाव में उसे निस्सार जान पड़ने लगी। महाश्रेष्ठ प्रेस्त पुत्र के स्वास्थ्य में सुधार से प्रसन्न थे। पुत्र के चिंतित और स्थिर रहने के समाचार से उनकी अन्य मनस्कता दूर करने के लिए पृथ्वीसेन के ही कक्ष में उन्होंने नित्य संगीत और विनोद के दूसरे प्रबंध किए जाने का आदेश दिया। पृथ्वीसेन के हुए आयोजन केवल कोलाहल जान पड़ते थे। वह विरक्ति से ऐसे आयोजनों को हटा देने का संकेत कर मौन पड़ा रहता। श्रेष्ठ स्वयं भी पुत्र के पर्यक के समीप पीठिका पर उपादान का आश्रय लिए घड़ी आध घड़ी बैठकर अनेक प्रसंगों से पुत्र का शैथिल्य दूर करने का यत्न करते। पृथ्वीसेन उस वार्ता में भी रस न पाता। वह अपने मन की बात पिता के सम्मुख प्रकट करने का उपाय निरंतर सोचता रहता, परंतु साहस न कर पाता। पीड़ा हाथ में लिए स्निग्ध श्याम वर्ण नवीन दासी के कंधों का आश्रय लिए महाश्रेष्ठी कक्ष में आए। पृथ्वीसेन के पर्यक के समीप पीठिका पर आसन ग्रहण कर बोले, पुत्र, स्थिवर चिवक की चमत्कारिक औषधि से तुम्हारे स्वास्थ्य में संतोषजनक सुधार हो रहा है। वत्स, कहो तुम्हारे शैथिल्य का कारण क्या है। मन का अवसाद स्वास्थ्य के लिए घातक है। पुत्र, प्रसन्नता और स्फूर्ति पाने का यत्न करो। तुम्हें संगीत के मर्म में गति है। तक्षणापत से आई यह दासी उल्का वीणा वादन में अद्भुत क्षमता रखती है। इसका वादन तुम्हारे मन की चिंता हरेगा। श्रेष्ठी ने दासी का वादन आरंभ करने का संकेत किया। दासी की अंगुलियां के स्पर्श से वीणा की तार से प्रथम झनकार होते ही पृथ्वीसेन के मुख में विरक्ति का स्वाद भराया। हाथ उठाकर दासी को मौन रहने का संकेत कर सिर झुकाए उसने पिता का संबोधन किया, तात, मेरी इच्छा है शिविकारूढ़ होकर एक बार धर्मत्स के प्रसाद में हो आऊं, अनुमति दीजिए। स्वास्थ्य की इस क्षीणता और शैथिल्य में वत्स किस प्रयोजन से। अपनी श्वेत पीली दाढ़ी हाथ में सूतते हुए श्रेष्ठ ने विस्मय प्रकट किया। नेत्र झुकाए हिपसेन ने उत्तर दिया, समर यात्रा पूर्व मैं महापंडित धर्मत्स की पौत्री से विवाह का आयोजन कर चुका हूँ। उस कार्य को अविलंब पूर्ण करना चाहता हूँ। वृद्ध श्रेष्ठ अपनी दाढ़ी को सैन्य सैन्य हाथ से सूतते रहे। ईश्वत मुस्कान से बोले, पुत्र, देवताओं ने प्रसन्न होकर तुम्हें विद्या बुद्धि कौशल धन और रण में विजय का सम्मान दिया है। समय पर वे देवता तुम्हें स्त्री सुख में भी कृपणता न करेंगे। एक दिव्या क्या अनेक लावण्यमयी कलामयी ललनाएं तुम्हारे भोग के लिए प्रस्तुत रहेंगी। जो बुद्धिमान अवसर के अनुकूल व्यवहार करता है उसके लिए देवता श्लोक और परलोक के सभी सुखों का वरदान देते हैं। पुत्र, अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करो। पिता के सम्मुख संकोच से मौन रहकर पृथ्वीसेन मन ही मन अधिक व्याकुल हो उठा। उसकी कल्पना में दिव्या अनेक अत्यंत कमनीय रूपों में आकर उपस्थित होती। नित्य के अनेक मुद्राओं में वलयित उसके बाहु क्षीण कांटी के ऊपर विस्मित होता। अस्पष्ट गोलाइयों में बटा वक्ष स्थल चिकने साटक से झलकती उसकी माशल लंबी पुष्ट लौकी के सम्मान जंघाए उसका कोमल गौर अंडाकृत मुख पतले रक्त ओष्ठ, सुडौल नासा, फैले हुए नेत्र जिनमें विश्वास की गहराई थी, प्रथम परिचय के अवसर पर दिव्या का सहज सौजन्य, उसकी अधीरता में दिव्या के नेत्र सजल हो जाना, हृदय पर सिर रखकर उसका आश्वासन देना, उसके अंगों का स्फूर्तिदायक स्पर्श, समर यात्रा की रात्रि में उसका अनुरागमय आत्मसमर्पण, प्रसेन का रक्तसाव से निर्बल शरीर कंठित हो जाता, उसकी भावना दिव्या को पाने के लिए अदम्य विवेक से उमग उठाती और फिर असमर्थ होकर असफलता की बाधा पाकर तट से टकराकर पलटती लहरों की भांति वह भावना कुछ दूर दिशा में भी जाती। क्यों वह मेरे पति इस प्रकार विरक्त हो गई, उस प्रकट कोमलता और कमनीयता में इतनी निष्ठुरता छिपी थी, जैसे कठोर शिला पर ठहरे थिथले जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा के सौंदर्य का कुछ सार नहीं। शिरो उसके प्रति अनुराग प्रकट करती थी, परंतु प्रतिशयन उपेक्षा करता था। अब वह शिरो के प्रति अपनी उपेक्षा से संकुचित होने लगता, फिर सोचता, नहीं, वह दिव्या को पाएगा ही। दृष्टि छत की ओर लगाए दिव्या से एकांत मिलन के क्षणों में अपनी अधीरता और उसका निग्रह, उसकी विह्वलता के सम्मुख दिव्या का आत्मसमर्पण, इस घटना पर विचार कर उसे विस्मय होता। क्या दिव्या इतनी अस्थिर हो सकती है? पृथ्वीसेन ने पिता के मुख से गणपति की पौत्री शिरो की प्रशंसा सुनकर उसका अभिप्राय जानकर व्यवस्था के स्वर में कहा, तात धर्मत्स की पौत्री से प्रतिज्ञाबद्ध होने और उसके प्रति अत्यंत अनुराग के कारण मेरे लिए किसी दूसरी कन्या से विवाह का प्रसंग मन में लाना संभव नहीं। वृद्ध सृष्टि का हाथ अभ्यास के अनुसार अपनी दाढ़ी सैन्य सैन सूखते हुए थम गई, माथे पर भ्रुकुटी की रेखा गहरी हो गई, परंतु मुख पर मुस्कुराहट दिखाई दी। सृष्टि की यह मुस्कान दृढ़ निश्चय का संकेत थी। ताड़पत्र का विशाल व्यंजन डुलाकर वतास करते दास शिविर को सृष्टि ने आदेश दिया, अपने स्थान पर दास वाक की सेवा में भेजो। दास वाक बहरा और गूंगा था। उसका कार्य विशेषतः गुप्त मंत्रणा के समय सेवा में उपस्थित रहना था। इस आयोजन से पृथ्वीसेन समझ गया कि पिता प्रसंग पर गंभीरता से वार्तालाप करेंगे। वह भी अपने निश्चय पर दृढ़ था। सृष्टि मुख और नेत्र में मुस्कान लिए बोले, वत्स, यौवन के आरंभ में नारी के प्रति आवेग प्रबल होता है। पुत्र आवेग एक वस्तु है, जीवन दूसरी। जीवन जल का पात्र है, आयोग उसमें एक बुदबुदा मात्र है। जीवन की सफलता लिए किसी समय आयोग का दमन आवश्यक हो जाता है। जैसे रोग के पथ्य अरुचकर होने पर भी उपयोगिता के विचार से ग्रहण किया जाता है। कामना की तृप्ति के लिए तुम अपने सामर्थ्य के अनुकूल अनेक कमनीय स्त्रियों से अनुराग कर सकते हो। विवाह को जीवन में सामर्थ्य और सफलता का साधन बनाओ। सामर्थ्य से ही मनुष्य भोग और कामना का अधिकारी होता है। सृष्टि ने पुत्र को उत्तर देने के लिए क्षण भर अवसर दिया, परंतु उसी सिर झुकाए मौन देखकर वे फिर बोले, पुत्र, स्त्री जीवन की पूर्ति नहीं, जीवन की पूर्ति का एक उपकरण और साधन मात्र है। सामर्थ्यवान सफल मनुष्य अनेक स्त्रियां प्राप्त कर सकता है, परंतु सफलता के अवसर जीवन में अनेक नहीं आते। पुत्र, संसार में बल ही प्रधान है, धन बल और जन बल। तुम मद्रगण के राजा गणपति की कृपा की उपेक्षा कर वृद्ध देव शर्मा की कृपा पर निर्भर रहना चाहते हो। पुत्र, तुम नीतिवान हो, विचार करो। यवन गणपति की पौत्री से विवाह कर तुम अनायास बिना किसी विरोध के महाकुलीन सामंत बन जाओगे, परंतु देव शर्मा की प्रपौत्री से विवाह की इच्छा करने पर, उदार देव शर्मा की आपत्ति न करने पर भी संपूर्ण द्विज समाज को अपना सूत्र बना लोगे। द्विजवर्ग की सत्ता इतर जन की हीनता और इतर जन से सेवा प्राप्त करने के अधिकार पर आश्रित है। इतर जन को अपने समान बना लेने पर उनका विशेष अधिकार क्या रह जाएगा? इतर जन का सशक्त होना उन्हें स्वीकार्य नहीं, परंतु समर्थ की सत्ता वे भी अस्वीकार कर सकते हैं। हम किसी को शत्रु क्यों बनाएं? पुत्र, हमें शत्रुओं की नहीं, मित्रों और सहायकों की आवश्यकता है। अनुमोदन की आशा में श्रेष्ठ क्षण भर पुत्र की ओर देखते रहे। उसके पुनः मूक विरोध से सिर झुकाए देख उनका स्वर आर्द्र हो गया, पुत्र, एक दास की स्थिति से उठकर मैं इस अवस्था में पहुंचा हूं कि मेरा पुत्र सेनापति बनकर महासेनापति बनने की आशा कर सकता है। पुत्र, सामर्थ्य और अधिकार की चरम सीमा यही नहीं है। द्रव्य और वैभव का उपयोग केवल शूद्र भोग से नहीं, उससे प्राप्त शक्ति में ही है। पुत्र प्रधान शक्ति सुख का भोग है, पुत्र अवसर है कि तुम मद्र के गणपति का विश्वास प्राप्त कर सामंत पद का अधिकार पाकर अपने द्रव्य से मद्र की रक्षा के लिए एक सेना रख सकते हो। वह सेना तुम्हारी होगी, तुम मद्र गणराज का रूप बदल सकते हो। मैं तुम्हें परम भट्टारक मध्य के गणपति के आसन पर देखना चाहता हूँ, मध्य के छत्रपति राजा के आसन पर देखना चाहता हूँ। यदि मगध में शूद्र मौर्य वंश का राज्य स्थापित हो सकता था तो मध्य में प्रेस्त वंश का राज्य क्यों नहीं स्थापित हो सकता? प्रेस्त पुत्र की ओर दृष्टि लगाए मौन बैठे रहे। पुत्रसेन हथेली पर ठोड़ी टिकाए अवाक रहा। पिता ने उसे कल्पना और महत्वाकांक्षा के अनुकूल सागर की तरंगों में धकेल कर छोड़ दिया। इस विस्तार में पुत्रसेन का मस्तिष्क चकरा रहा था। उसे उसकी निजी अनुभूति के विपरीत उस प्रवाह की गति अति प्रबल थी। वह किसी प्रकार सिर उठाकर श्वास ले पाने का यत्न कर रहा था। सृष्टि ने सिर झुकाए उपाधान के सहारे करवट ली। पुत्रसेन ने समझा, पिता उठने का विचार कर रहे हैं। अपना मौन स्वीकृति का संकेत समझे जाने की आशंका से उसने सिर झुकाए ही साहस किया। परंतु तात, मैं दिव्या से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, मैं उसे पत्नी के रूप में ग्रहण कर चुका हूँ, यह विश्वासघात होगा। वृद्ध की भिकुटी अधिक गहरी होकर उनके नेत्रों पर झुक आई और मुख पर और नेत्रों में विद्युत की मुस्कुराहट गहरी हो गई। पुत्र, यह विश्वासघात नहीं। कालांतर में तुम चाहो तो धर्मत्व देव शर्मा की प्रपोत्री से भी विवाह कर सकते हो। समर्थ पुरुषों को अनेक स्त्रियों और विवाहों की आवश्यकता होती है, परंतु इस समय नहीं। तुमने उसे छलने के विचार से प्रतिज्ञा नहीं की। जिस परिस्थिति में तुमने यह विचार और प्रतिज्ञा की थी वह अब नहीं है। प्रतिज्ञा की परिस्थिति बदल जाने से प्रतिज्ञा का आधार नहीं रहता। उस समय देव शर्मा की कन्या से विवाह ही उचित लक्ष्य था। अब उससे अधिक श्रेय मार्ग सम्मुख है। भविष्य में तुम्हारी सफलता गणपति की कन्या से विवाह करने में ही है। सिर झुकाए पृथ्वीसेन के मौन अस्वीकृति का भाव जानकर महाश्रेष्ठि पुनः आद स्वर में बोले, पुत्र, तुम मेरे संपूर्ण जीवन के प्रयत्नों को, अपने वंश के भविष्य को एक युवती के मोह में नष्ट कर देना चाहते हो। महापंडित चाणक्य ने कहा है, आत्मने सततम रक्षेत दारोरपि धनरपि। पुत्र स्त्री भोग्य है, मति ब्रह्म होने पर मोह में पुरुष स्त्री के लिए बलि दान होने लगता है। वत्स, ऐसी परिस्थितियों में नितिज्ञ महत्वाकांक्षी और परलोकगामी पुरुष के लिए नारी का को पतन का द्वार कहते हैं। पृथ्वीसेन उसी प्रकार निश्चल मौन बैठा रहा। क्षण भर चिंतामग्न रहकर वृद्ध ने पुनः पुत्र को संबोधन किया, पुत्र, मुझे विश्वास है तुम मेरे सम्मान और अपने भविष्य की रक्षा करोगे। गत पूर्णिमा के अवसर पर सामंत कार्तवीर के प्रसाद में मल्लिका के नृत्य के समय धर्मत्थ देव शर्मा ने तुम्हारे स्वास्थ्य के विषय में कुशल क्षेम पूछकर तुम्हारे और दिव्या के अनुराग का उल्लेख किया था। उस समय मैंने धर्मत्थ का उत्तर दिया, अपने कुल और वंश के विचार से अपने पुत्र के लिए द्विज परिवार की कन्या की कामना करके मैं सदा मध्य के द्विजवर्ग के कोप का भाजन बनने का साहस न करूंगा। इस समय गणपति की पोत्री शिरो और पृथ्वीसेन में विशेष अनुराग है। उस संबंध में वर्ण विचार बाधक नहीं। मैं गणपति के सम्मुख पृथ्वीसेन के लिए उनकी पौत्री के प्राणी का प्रार्थी हूँ। पृथ्वीसेन की गिरवा और अधिक झुक गई। पिता की ओर न देखकर वह सिर उपाधान पर रखकर करवट से लेट गया। पृथ्वीसेन का शरीर शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ हो गया, परंतु मन उसका अत्यंत खिन्न रहता। वह कभी बाहर चतुस्थल में और कभी अंतःपुर के प्रसाद में अनमयस्क सा बैठा रहता। शिरो के आने पर भी वह विशेष उत्साह प्रकट न कर पाता। शिरो वीर पृथ्वीसेन की गंभीरता पर मुग्ध थी। शिरो के विशेष आग्रह से केवल एक बार वह मल्लिका प्रसाद में और एक बार गणपति के प्रसाद में उसके साथ स्वीकार पर गया। उसके मन में निरंतर एक ही समस्या थी, शिरो से विवाह करके भी वह दिव्या को पा सके। गंभीर विचार और दृढ़ निश्चय से मन को वश कर पृथ्वीसेन शिरो के प्रति अनुराग और उत्साह दिखाने लगा। एक दिन उसने भावावेश की अवस्था में शिरो को अंक में लेकर उससे दिव्या को सपत्नीक के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। शिरो नागिन की भांति फुफकार कर दूर जा खड़ी हुई। उसने स्थूल रक्त ओष्ठ फड़फड़ा उठे और नेत्रों में क्रोध के उष्ण अश्रु बहाए। इसके पश्चात शिरो ने पृथ्वीसेन के कंधे के आश्रय बैठा कर आंसुओं से नेत्रों का काजल बहाते हुए जम्मूद्वीप के आर्यों के कुत्सित बहुपत्नी प्रथा के प्रति घृणा प्रकट की। आर्यों में स्त्री केवल भोग्य संपत्ति और दासी है, वह तो अपने प्रियतम को किसी के साथ बांट नहीं सकती। वह तो अपने प्रियतम के हृदय को एक छत्र रानी और अंतःपुर की एकमात्र स्वामिनी बनेगी। पिता के तर्क को उचित मानने के कारण सोच सोचकर पुत्रसेन के लिए स्त्री नीरस विषय और जीवन पथ की अरोचक बाधा मात्र बन गई। वह अपने असाधारण बुद्धि और दूरदर्शी पिता के निर्देश से मन को जीवन के संघर्ष के लिए सानद्ध कर रहा था। अपने आप को शीरों की प्रणय क्रीड़ा का कंदुक अनुभव कर उसे स्त्रियों के प्रति अनुराग की कल्पना केवल विडंबना मात्र जान पड़ने लगी। वह अपने तुच्छ संपन्न अभिजात वंशी परिवार में कामुकता की साधन विवश सुंदर युवती दासियों से करने लगता। दिव्या प्रसेन की भली भांति देखे बिना उससे एक शब्द बोलने का अवसर न पाकर विवश लौट कर हताश हो गई। आशंका से वह सोचती, 2-2.5 मास से पूर्व आर्य सैया से उठ न सकेंगे, मेरा क्या होगा। प्रसेन के विजयी होकर लौट आने से धर्मत्व के अंतःपुर में दिव्या के विवाह की बात एक अप्रिय अनिवार्य प्रसंग के रूप में उठने लगी। ऐसे समाचार छाया द्वारा दिव्या तक पहुँच जाते। विष्णु शर्मा और पितव्य प्रबुद्ध शर्मा के कक्ष में पृथ्वीसेन की कुलेनता के संबंध में विवाद, महापृथ्वी भृगु शर्मा की उदासीन तटस्थता, इस प्रसंग में महादेवी की विरक्ति, तात की अनुमति के कारण उनका उसे सह लेना, ऐसे विरोध और अपमान को दिव्या वरदान के रूप में अंगीकार करने के लिए विह्वल थी। परंतु पृथ्वीसेन के रोग सैया पर पड़े रहते क्या हो सकता था। विवाह की विधि से पृथ्वीसेन को पाए बिना अपने शरीर में उपस्थित पृथ्वीसेन के अंश की रक्षा व विरोधी दृष्टियों से किस प्रकार करे। उसके जीवन का संपूर्ण महत्वाकांक्षा और माधुर्य कलंक और अपराध बना जा रहा था। विकल और विह्वल पृथ्वीसेन को आश्रय देकर और उसे पाकर उसने गर्व और संतोष अनुभव किया था। उसकी वह आत्मगरिमा ही अब उसके पाँव के नीचे अंधकूप बनकर उसे निगल जाना चाहती थी। कौन चमत्कार इस समय उसकी प्रतीक्षा कर सकेगा। पृथ्वीसेन की संतान धारण करने के लिए ही पृथ्वीसेन से उसका विवाह होगा। फिर वही विषय अब इतना प्राणांत क्यों बन गया। दिव्या निरंतर स्थिर होकर कक्ष में पर्याप्त पर लेटी रहती। महादेवी उसके स्वास्थ्य के विषय में चिंतित होने लगी। धाता को उन्होंने दिव्या की विशेष परिचर्या में नियत कर दिया और उससे प्राय उस विषय में जिज्ञासा करती रहती। धाता और छाया आशंकामय परिस्थितियों की गुरुता जानकर भी दिव्या के प्रति अनुराग के कारण महादेवी के सन्मुख और अन्य कक्षों में कुमारी के केवल साधारण अस्वस्थ की बात कहती। छाया अपने प्रेमी बाहुल को दार्व के युद्ध में खोकर विरह विधता और वंचित स्वामिनी के प्रति अत्यंत अनुरक्त हो उठी थी। वह पूर्ण रूप से दिव्या की छाया ही बन गई। वह स्वामिनी के पर्यक से दूर न होती। रात्रि अधिक बीत जाने पर भी वह निश्चय न कर पाती कि दिव्या निद्रागत है अथवा चिंताग्रस्त हो मौन पड़ी है। वह पल पल स्वामिनी की ओर देखती रहती, पर्यक के स्थूल का सारा लिए सो ही जाती। दासी आस्या महादेवी के आदेश से नित्य कुमारी के स्वास्थ्य संकल्प के लिए नैवेद्य लेकर प्रजापति के देवस्थान और धातु चैत्य जाती थी। उससे पाए अनेक समाचार दिव्या को सुनाती। आस्या ने कहा था, जैसे धर्मस्थ के प्रसाद से कुमारी के स्वास्थ्य संकल्प का नवैद्य प्रजापति के देवस्थान और धातु चैत्य में जाता है, उसी प्रकार आर्य पृथ्वीसेन के स्वस्थ संकल्प के लिए प्रस्थ प्रसाद से भी नवैद्य जाता है और सुना है गणपति के प्रसाद से भी। आर्य अब स्वस्थ हैं, उत्साह ने छाया से समाचार दिया। दिव्या छाया के उत्साह का अंश न पा सकी। गणपति के प्रसाद से पृथ्वीसेन के स्वास्थ्य संकल्प के लिए नवैद्य जाने के समाचार से वह दूसरी कल्पना में व्यस्त थी। उसे पृथ्वीसेन के पर्यक के समीप शीरों की गृह सामने के अधिकार में धृष्टतापूर्व व्यवहार नेत्रों के सम्मुख दिखाई देने लगा। दिव्या ने छाया से अस्या द्वारा पाए गणपति की पौत्री और पृथ्वीसेन के एक शिवका पर आरूढ़ होकर मल्लिका प्रसाद पुष्करणी और गणपति के प्रसाद में जाने का वृत्तांत भी सुने। उसका मन चिंता के गहरे कूप में उतर गया। वह सोचती, आर्य को क्या हो गया। वह अति कोमल और दुर्शिव, वह युद्ध का विजेता, वह आत्मसम्मान के लिए प्राणों पर खेल जाने के लिए तत्पर, जो मेरे बिना जीवन निरर्थक समझ रहा था, मुझे पा लेने के आश्वासन से जो अम्लान मुख समर में मृत्यु का आलिंगन करने चला गया था, उसे क्या हो गया। क्या आर्य मुझे भूल गए। क्या वह प्रणय और विकलता सब छल और प्रवंचना थी। उसके लिए अब शरण कहाँ है। यदि पृथ्वी फटकर उसे अपने गर्भ में आश्रय दे देती, वह त्राण पाने के लिए उत्पन्न ही नहीं हुई। इसलिए तो उसे जन्म देने वाली माँ भी उसे पृथ्वी पर छोड़ अंतर्धान हो गई। संसार भर में जिसे उसने अपना समझा वही प्रवंचना कर रहा है, और आर्य रुद्रधीर वह स्वयं उसके अपने ही तात से निर्वासन का दंड पाकर दूर चला गया। मध्यान्ह में नेत्र मूंदे विष्टिर पर लेटी दिव्या का निद्रागत जानकर छाया कुछ समय के लिए महादेवी के कक्ष में अपनी माता की ओर चली गई। दुर्भाग्य का समाचार सुनकर वह तुरंत ही दिव्या के कक्ष की ओर लौटी। दिव्या अभिभीत की ओर मुख किए निश्चल लेटी थी, प्रतीक्षा छाया के लिए असहाय हो रही थी। भयंकर दुर्घटना से वह कुमारी को कैसे अनजान रहने दे। मन की दुविधा को वश में करने के लिए कक्ष की सामग्री यथास्थान रखने के प्रयत्न में छाया के पाव की ठोकर से धातु का दीप स्तंभ गिर कर कक्ष झंकार से गूंज उठा। आहट से दिव्या ने करवट लेकर उस ओर देखा। स्वामी के निद्रा में व्याघ्यात के लिए विनीत स्वर में क्षमा मांगकर विस्टर के समीप आकर छाया ने वग्र संवाद में कहा, आर्य पृथ्वीसेन से गणपति की पौत्री के वाग्यदान के उत्सव का निमंत्रण प्रसाद में आने से तात और महादेवी अपने अपने कक्ष में अत्यंत चिंतित हैं। आर्य धृति शर्मा और विनय शर्मा में इस प्रसंग को लेकर कटु विवाद हो गया। दिव्या विस्टर पर निश्चल पड़ी छत की ओर दृष्टि लगाए रही। डेढ़ घड़ी तक वह उसी प्रकार पड़ी रही। छाया हृदय से उछल आए क्रंदन को कंठ में दबाए स्वामिनी को दृष्टि बचाकर आंसू पोंछ लेती और फिर स्वामिनी की ओर देखने लगती। छाया एक पहर रात बीत जाने पर दिव्या को सहारा देकर उसके पर्यक पर ले गई। हेमंत के भीषण शीत में भी दिव्या को वस्त्रों की सुधि न थी। छाया ने दुकुल और अर्ध से शरीर को भली भांति ढक दिया और पर्यक की पार्टी पर चिबुक रखकर समीप भूमि पर बैठ गई। दिव्या के नेत्र सूखे थे, परंतु छाया के नेत्र निरंतर आंसू बहाने और पोछे जाने के कारण सूज कर लाल हो गए। उसकी ओर देखकर उपाधान से सिर उठाए बिना ही दिव्या ने पुकारा, छाया। बहुत समय पश्चात स्वामिनी के मुख से संबोधन सुनकर छाया की गर्दन उत्साह से उठ गई। एक बार मैं आर्य से साक्षात्कार करूंगी, क्षीण स्वर में परंतु निश्चय से दिव्या ने कहा। भद्रे, गणपति की पौत्री ने निश्चय ही तांत्रिक द्वारा आर्य पर वंशीकरण किया है। छाया स्वामिनी के समीप होकर नेत्रों में प्रतिहिंसा भरे रहस्य के स्वर में बोली, भद्रे का आदेश हो तो तांत्रिक वैकुंठ पंडित से गणपति की पौत्री के वंशीकरण का उच्चाटन मंत्र और भद्रे के लिए वंशीकरण कवच प्राप्त करूँ। हाँ छाया, जो भी संभव हो। हाँ छाया, जो भी संभव हो। निराशा से क्षीण स्वर में दिव्या ने कहा, दैव जाने आर्य को क्या हो गया है। आर्य के लिए सीरो यदि उतनी ही काम में हो गई है तो भी वो मेरी अवज्ञा क्यों कर रहे हैं। मैं सीरो के साथ सख्य भाव से सपत्नित्व स्वीकार करूंगी। सभी कुलीन आर्यों के परिवार में अनेक पत्नियां हैं, क्या सीरो भी मेरे साथ आर्य की पत्नी नहीं बन सकती। एक वृक्ष की छाया में अनेक प्राणी विश्राम पाते हैं, गजराज की अनेक पत्नियां हैं, उसी प्रकार आर्य की भुजा के आश्रय में हम दोनों ही रहेंगी। दिव्या मौन हो गई। दिव्या शरीर पर ओढ़ाए दुकुल और आध से उष्णता अनुभव करने लगी। उसने वस्त्रों को सहसा शरीर से परे हटा दिया। तुरंत वस्त्र पुनः उसके शरीर पर खींचकर छाया ने अन्वय किया, भद्रे अत्यंत शीतल हिमवात गवाक्ष से आ रहे हैं, शरीर कष्ट पाएगा। छाया दिव्या के उष्णता से तपते पांव उघार कर उसका शेष शरीर वस्त्रों से ढके रही। दिव्या ने उष्णता के क्षोभ से सिर के केसों को उपाधान पर फैला पुनः छाया को पुकारा, आर्य के प्रसाद में बीसियों दासियां अनेक सेवा कार्यों के लिए हैं, क्या मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। उत्तर देना छाया के लिए संभव न रहा। मुख और नेत्रों पर उत्तरीय दबाकर वह पर्यक के स्थूण के आश्रय सिर घुटनों पर टिकाकर बैठ गई। क्रंदन के उच्छ्वास से उसका हृदय बाहर आ जाना चाहता था। बहुत समय तक किसी प्रकार अपने आप को वश कर उसने पुनः स्वामिनी की ओर देखा। दिव्या मौन पड़ी थी। अपने आंसुओं और सिसकियों से स्वामिनी को क्षुब्ध करने की आशंका के कारण वह उसके मुख के समीप जाकर देख न पाई कि दिव्या निद्रागत है या जाग रही है। रात्रि के तीसरे प्रहर तक इसी दुविधा में कभी उठते कभी बैठते उसे नींद का झोंका आ गया। अत्यंत शीत के कारण शरीर को घुटनों और कोहनियों में समेट वह स्वामिनी के पर्यक के नीचे उसके स्नेह रज्जु से बंधे कुत्ते की भांति पड़ी रही। निद्रा भंग होने पर छाया ने देखा, घाम फैल चुका था। विलंब तक सोने की लज्जा से वह वस्त्रों को संभाल कर उठ खड़ी हुई। हेमंत के तुहिन आवृत सूर्य की सुखद रंगीन किरणें गवाक्ष से आकर दिव्या के पीत मुख पर पड़ रही थी। वह गाढ़ निद्रा में थी, उसका श्वास सम गति से चल रहा था। स्वामिनी की निद्रा भंग होने की आशंका से आहट न कर छाया कक्ष से निकली। स्वामिनी की गत रात्रि की वेदना का वृत्तांत माँ धात्री से कहने वह अंतःपुर के उद्यान के उस पार आर्य घृति शर्मा के कक्ष की ओर गई। आर्य घृति शर्मा की युवा पत्नी मोक्षा के प्रथम प्रसव की असुविधा के कारण अनुभव धात्री निरंतर उन्हीं की परिचर्या में थी। प्रभात की प्रथम किरणों में उद्यान के हरी घास और लता कुंजों पर ओस की बूंदें झलक रही थी। उदास छाया को जान पड़ा। रात भर संपूर्ण प्रकृति भी उसकी स्वामिनी और उसकी भांति आंसुओं बहाकर अभी ही शांत हुई है। आर्य मोक्षा के चिंताजनक अवस्था के कारण महादेवी और आर्य विष्णु शर्मा, भृगु शर्मा, विनय शर्मा, प्रबुद्ध शर्मा आदि के कक्ष से आर्य अमिता, तारा, उमा आदि देवियाँ घृति शर्मा के कक्ष में एकत्र थीं। बाहर घृति शर्मा चिंता की मुद्रा में विनय शर्मा से परामर्श कर रहे थे। भीतर प्रयाग पर पीड़ा से कहारती आर्य मोक्षा को धात्री अपने बाहों में संभाले हुए थी। महादेवी दुकुल में शरीर लपेटे समीप ही पीठिका पर बैठी थी। कुल बहुवे मोक्षा की पीड़ा से निरपेक्ष प्रसूत के अवसर से उत्साहित होकर परस्पर वार्तालाप में मग्न थी। छाया ने सुना, आर्य अमिता सुविधा से सुने जाने योग्य रहस्य के स्वर में कह रही थी, कुमारी दिव्या के अस्वस्थता का क्या कहना, सभी लक्षण तो गर्भ के हैं। छाया महादेवी को प्रणाम करने के लिए उनके सम्मुख भूमि पर सिर टिकाए थी। आर्य अमिता के शब्द उसके कानों में गए जैसे मस्तिष्क पर वज्रपात हो गया। नेत्र ऊपर उठकर उसने देखा, महादेवी प्रणाम स्वीकार करने की शुद्ध भूल वार्धक्य से निस्तेज नेत्र आर्य अमिता की ओर उठाकर ओठ खोल रही थी। छाया सांस रोके द्रुत गति से दिव्या के कक्ष की ओर लौटी। स्वामिनी अब भी उसी प्रकार गाढ़ निद्रा में शांत और निश्चल थे। नियमित श्वास से उनके सुगोल वक्ष नियमित अंतर से ऊपर नीचे हो रहे थे। नियमित और दीर्घ निश्वास नियमित अंतर से सुनाई दे रहे थे। छाया ने उत्तेजना में पर्यक का चक्कर लगाया और दिव्या के मुख की ओर देखती खड़ी रह गई। स्वामिनी की निद्रा किस प्रकार भंग करे, भयंकर आपत्ति से अज्ञान कैसे रहने दे। छाया कुछ क्षण कक्ष के बाहर जाकर खड़ी रही, लौटकर निद्रागत स्वामिनी की ओर देखा और दोनों हाथों से अपना सिर थाम कर पर्यक का आश्रय लेकर बैठ गई। फिर स्वामिनी के मुख की ओर देखा, उठकर फिर कुछ क्षण के लिए बाहर गई, लौटकर फिर देखा। स्वामिनी के लिए जल प्रक्षालन पात्र और पौषण्य वस्त्र पर्यक के समीप लाकर रखा। स्वामिनी अब भी गूढ़ निद्रा में अचेत विश्राम पा रही थी। छाया के शरीर का रोम रोम दुश्चिंता से कांप रहा था। दिव्या ने नेत्र खोले, आपत्ति का प्रसंग छाया के मुख पर आकर रह गया। क्या कहे, किस प्रकार कहे, दुविधा में उसने मुग्ध होने के लिए जल से पूर्व प्रौच्छन्य वस्त्र आगे बढ़ा दिया। कुछ कहने में असमर्थ छाया के नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। दिव्या के कारण पूछने पर छाया अत्यंत अवश हो गई। जल का पात्र हाथ से छूट जाने की आशंका से उसे भूमि पर रखकर आंसू भरा मुख उत्तरीय में लपेट कर वह पर्यक की पाटी पर सिर रखकर बैठ गई। दिव्या के अनेक बार प्रश्न करने पर छाया ने उत्तरी से लिपटा सिर पर्यक पर टिकाए ही उच्छ्वासों से भग्र स्वर में कठिनता से कहा, आर्य मोक्षा के कक्ष में सब देवियां और महादेवी के सम्मुख आर्य अमिता ने सबको सुनाकर कहा, कुमारी दिव्या का स्वस्थ क्या, सभी लक्षण गर्भ के हैं। दिव्या के नेत्र काष्ठ की प्रतिमा की भांति अपलक खुल रह गए। मुख सहसा बहुत पीला और भाव रहित हो गया। पर्यक पर गिरने की आहट सुनकर छाया ने सिर उठाकर देखा, दिव्या एक ओर लुढ़क गई थी। उसने व्याग्रता से स्वामिनी को संभालने का यत्न किया, देखा वह मूर्छित थी। छाया की व्याग्रता ने उसके नेत्रों का जल प्रवाह रोक दिया। वह दिव्या के मुख पर शीतल जल के छींटे देकर वस्त्र से वताश कर उसके पांव के तलवे सहलाकर उसे सचेत करने का यत्न कर रही थी। लगभग आधी घड़ी के पश्चात दिव्या ने नेत्र खोले, अपने शुष्क ओष्ठों की जीवा से रिक्त कर उसने जल मांगा। छाया ने अत्यंत संयम से अपने आंसू वश में किए। वह अनेक बातों की ओर दिव्या का ध्यान आकर्षित कर उसे पुनः मूर्छा से बचने के लिए सतर्क कर रही थी। दिव्या छाया की किसी बात का उत्तर न देकर शून्य निष्पलक दृष्टि कभी कक्ष की छत की ओर, कभी भित्तियों की ओर और कभी द्वार से बाहर उद्यान की ओर लगाए थी। मध्याह्न से पूर्व दासी आस्या कुमारी के लिए पथ्य लेकर उपस्थित हुई। अत्यंत अनुनय से छाया ने पथ्य का कुछ भाग लेने के लिए दिव्या को विवश कर दिया। आस्या के लौटते समय छाया ने उसे धाता को तुरंत आने के लिए कुमारी का आदेश दिया। चौथे पहर सहसा पिपड़ी सहनाई और मृदंग के स्वर से संपूर्ण प्रसाद गूंज उठा। मुस्कुराने का यत्न कर छाया ने कहा, आर्य मोक्षा ने संतान प्रसव की है। उत्तर में दिव्या ने केवल दीर्घ निश्वास लिया। मन ही मन वह सोचने लगी, आर्य मोक्षा का गर्भ परिवार के लिए उत्साह का कारण है और मेरा गर्भ कलंक का, क्योंकि मेरे गर्भ का पिता नहीं। अपने गर्भ को मैं उसके पिता के पास ले जाऊंगी। क्या प्रेस्त प्रसाद में पृथ्वीसेन से मेरा गर्भ इसी प्रकार विपत्ति और कलंक का कारण होता? मेरा वही स्थान है। छाया का संबोधन कर उसने कहा, अम्मा को बुलाओ, मैं प्रेस्त प्रसाद जाऊंगी। धर्मत्र का प्रसाद नवसंतान प्रसव के उत्साह और उल्लास में व्यस्त और व्यग्र था। धर्मत्र और महादेवी मर्मांतक धर्म दुश्चिंता में अपने कक्षों में पड़े थे। उल्लास और दुश्चिंता के मिश्रण से फैली अव्यवस्था में दिव्या किसी से कहे पूछे बिना अपने कौमार्य के गर्भ की लज्जा को यथासंभव कौशे पट में लपेटे शिविका पर बैठ कर दासी धाता को साथ लेकर प्रेस्त प्रसाद की ओर चल पड़ी। सब विपत्तियों को सहने के लिए प्रस्तुत होकर वह मन ही मन देवताओं से अनुनय कर रही थी, केवल इस समय शिरो आर्य के प्रसाद में उपस्थित न हो। संपूर्ण से संपूर्ण आयु उसकी दासी बनकर चरण सेवा के लिए प्रस्तुत रहना मुझे अस्वीकार न होगा। धर्मस्थ की पपोत्री किसी का अनेक दिन पश्चात देखकर अंतःपुर के द्वार पर पहरी खड़गधारी यवन ने आदर से मस्तक झुकाकर निवेदन किया, आर्य इस समय प्रमोदोद्यान में गणपति की पौत्री आयुष्मती शिरो की संगति में है। दिव्या सूचना से किंग कर्तव्य मूढ़ रह गई। लौटने का अवसर न था। द्वार पर वह कब तक और कैसे प्रतीक्षा कर सकती? उसने आदेश दिया, प्रतिहारी आर्य को समाचार से अवगत करो। उत्तर की प्रतीक्षा में दिव्या आत्मविस्मृत से स्वीकार पर बैठी रही। प्रमादोद्यान से दासी द्वारा आर्य प्रतिसेन का उत्तर यवनी ने निवेदन किया, आर्य क्षमा निवेदन करते हैं, वे अस्वस्थ के कारण संगति लाभ करने में असमर्थ हैं। दिव्या के कानों ने उत्तर सुना परंतु हृदय ने विश्वास न किया। वह मूक रहकर यवनी की ओर निष्पलक नेत्र लगाए रही, मानो अभी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। परंतु यवनी अपना कर्तव्य समाप्त कर चुकी थी। दिव्या को कुछ भी सूझ न रहा था। व्याप्त झंझावत में आशा के जिस दीपक को यत्न से आंचल में संभाले हुए वह मार्ग खोजती यहां पहुंची थी, उस प्रतिसेन के उत्तर के झोंके ने सहसा बुझा दिया। वह कुछ देख न पा रही थी। अंतःपुर के द्वार पर लगी दिव्या की भावशून्य दृष्टि देखकर अनुभवी धाता आशंकित हो गई। उसने अमर्यादित व्यवहार की आशंका से शिविका वाहकों को शिविका लौटा ले चलने का आदेश दिया। शिविका पथ पर पहुंचने पर दिव्या को चेत हुआ। अपनी स्थिति के ज्ञान ने उसके दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बहा दी। अभिजात वंशी कुमारी के राजपथ पर रोदन की अमर्यादा से भयभीत होकर धात्री ने शिविका के पट गिरा दिए। पटों में ढके जाने के अपमान से दिव्या ने उद्बोधित किया। सहसा उसे याद आ गया, प्रायः 2 वर्ष पूर्व मधुपर्व के उत्सव की संध्या उसका सरस्वती पुत्री का मुकुट धारण कर अभिजात वंशी कुमारों के कंधों पर गर्व से स्वीकार रूढ़ होना। वह कातर हो पट का शरण लेगी? नेत्रों से बहते आंसुओं की चिंता न कर उसने अपने हाथ से पट उठा दिए और उत्तरी से नेत्र पोंछ कर मस्तक उठा लिया। चतुर्धाता ने वाहकों को अधिक प्रकाश से पूर्ण राजपथ छोड़कर दूसरे मार्ग से धर्मत्स के प्रसाद की ओर बढ़ने का संकेत किया। प्रकाशित समृद्ध पर्णियों अट्टालिकाओं और जनसमूह से आकीर्ण मार्ग छोड़कर स्वीकार निम्न श्रेणी से बसे प्रकाशहीन पथ से चली जा रही थी। इस पथ पर व्यवसाय सूर्यास्त के समय ही स्थगित हो जाने से मार्ग प्राय अंधकारपूर्ण और निर्जन था। शिविका के साथ दीपदंड न होने के कारण वाहक निश्चिंत होकर स्थिर गति से पथ के मध्य में चलने वाले नागरिकों को कहते वच्छ वच्छ पास पास कहकर सचेत करते जा रहे थे। सहसा ललकार सुनाई दी, कौन है हमें मार्ग से हटाने वाला? अधियारे संकीर्ण पथ के बीचों बीच अस्पष्ट